ణమో అరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆయరియాణం నమో వజ్రాయాణం నమో లోయే సవిసాహూరం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమోగణి మంగళం కుందకుందార్యో జైని ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం నమః శ్రీ వర్ధమానాయ నిర్ధూతకలిలాత్మని సాలోకానాం త్రిలోకానాం యది విద్యాదర్పణాయతి దేశయామి సమీచీనం ధర్మం కర్మ నిబర్హిణం సంసారి దుఃఖతః సత్వాన్ యోధరత్తుత్తమే సుఖే సద్దృష్ట్యాని వృత్తాని ధర్మం ధర్మేశ్వరావిదు యదీయ ప్రత్యనీకాని భవంతి భవపద్ధతి. సప్తం సంలీక్షణ అధికార హై రత్నగణ సౌకచా. संलेखना का अर्थ होता है सत लेखन. सत यानी होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, और लेखन यानी क्या होता है छीलना, क्रस करना, कम करना. किसको? कसाय को और काया को. क्यों करना? तो कल अपन ने पढ़ा था कि ये धर्म कि रक्षा में यदि शरीर निमित्त बने तो शरीर का रक्षण करना, और जहां धर्म छूटता जाने तो देह को छोड़ देना. शरीर हमारा कुछ नहीं लगता, धर्म हमारा लगता, और धर्म के लिए शरीर की रक्षा, और धर्म के लिए शरीर का त्याग. और कल ये भी बताया था कि उपसर्गे, दुर्भिक्षे, जरसी, रुजायाम चने प्रतिकार. कब उपसर्ग आ जाए, उदय किसके कैसे, यानी मुनिराज दीक्षा लेके तैयार हुए और उनकी आंखें निकाल दी, चिल्लाती पुत्र घानी में पेल दिया. ऐसी सारी कथाएं समाधि मरण पाठ में आती. तो किसके कब उपसर्ग आ जाए, अच्छे राजा महाराजा यानी कीर्तिधर सेठ के राजा के लड़के सुकोसल, उनको उनकी ही मां फाड़ के खा गई. सुकुमाल उनकी भावी स्यालनी बन के खा गई. ऐसे उपसर्गों के भी अपन ने बहुत उदाहरण सुने. दुर्भिक्षे, न जाने ये जीव कहां पड़े अकेला. इसका उदय तो इसके साथ रहता है. कर्म को दया नाही, जैसे बांधे हैं वैसे ईमानदारी से उदय में आते. तो किसी के साथ न्याय न्याय नहीं चलता. जैसा टिफिन में भोजन है, चाहे पारसनाथ की पूजा करो चाहे सीमंदर की, वो जब टिफिन खोलोगे तो आपके ही टिफिन में रखी सामग्री आपको मिले. तो दुर्भिक्ष के लिए भी तैयार रहो कि कब आप परेशानी में पड़ सकते. रुजायाम, कब रोग आ जाए, और कैसे कैसे रोग चले इस काल के तो आश्चर्य. जन्मजात बच्चे को हर्निया, जन्मजात बच्चे के हार्ट में छेद, जन्मजात बच्चे को कैंसर, ये क्या है? तो कहते हो सकता है इसमें जैनियों को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये जीव तो अनादि का है, बंध तो बांधते ही विराधक भाव से. उदय तो कभी भी आ सकते, और उदय में आए तो आपको सामना करना. कहना ये है कि आपकी तैयारी क्या है. ये इस तरह का पाठ है कि भाई देह तो तीर्थंकर की भी नहीं रही, उन्हें भी छोड़ना पड़े. भाई तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आश्चर्य, उसी पथ पर चलो आप। कौन सा पथ है? भेद विज्ञान का। अपने को आप रूप देखो, शरीर को शरीर रूप देखो, जगत में अपना कुछ है नहीं। जब धन धन को साथी समझा था, ये भ्रम था। और ये मौत एकदम उद्घाटन करती है उस सत्यता का कि तुम इतने काल तक इस देह को अपना मानना नहीं छोड़ पाए, आज तो मानना पड़ेगा कि इस शरीर पड़ा है और हंसा चला गया। तो इस तरह से चार बातें बताई थी, उपसर्गे, दूसरा क्या बताया, दुर्भिक्षे, तीसरा जरसी यानी बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो पुण्य क्षीण होता है बुढ़ापे में, तो फिर वो अपना बेटा भी आपकी सुनता नहीं, बहू को भी बोझ लगने लगता है। दो चार साल तक पड़े रहो आप बिस्तर पर तो उपेक्षा बुद्धि होने लगी कि कब तक ऐसा चलेगा। तो आप उस संघर्ष का सामना करने तैयार हो कि नहीं, ये पढ़ा रहे पाठ, क्योंकि आपको ये बुढ़ापा आपको नहीं है, शरीर को है, और ये जो उपेक्षा हो रही वो आपको नहीं हो रही है, ये उदय करवा रहा है, और ये देह की हो रही है, आपकी नहीं हो रही। ऐसा भेद विज्ञान नहीं होगा तो कठिन होगा देह छोड़ना, और गति यानी परिणाम संकलेश के किए और गति बिगड़ी तो कोई भी राजा महाराजा और नरक में बिलबिला सकता दो मिनट। अति संकलेश भावते मरो, घोर स्वब्र सागर में पड़ो। अभी राजा महाराजा था, सारे लोग आरती उतार रहे थे, अब क्या हो रहा है दो मिनट बाद, ये किसकी कहानी चल रही है? अपनी जीव की, अपने जीव के विराधक भाव की, अपने जीव के विराधक भावों से संभलने की। अब ये जीव सावधानी से ईमानदारी से देह को भिन्न जानकर अपने आत्मा से आत्मीयता बढ़ाकर और इस संसार से ईमानदारी से चले जाए। सिद्ध हुए बिना कोई गुजारा नहीं है, यदि देह छूटी तो फिर आना पड़ेगा, दूसरी जगह जन्म लेना पड़ेगा, पर कोई कंसेशन नहीं है कि कुंद कुंद देव मुनिराज थे तो उन्हें कोई प्रकृति माफ कर दे। यदि पुण्य था, स्वभाव थे, तो उसका फल आया, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। एक वितराग भाव ही है जो जीव को मुक्ति दे सकता है, एक आत्मा का आश्रय ही है जो शांति दे सकता है, और जगत में कहीं इसकी ठहरने की जगह नहीं। कठिन नहीं है, इसलिए कठिन नहीं बाबू जी, धर्मशाला में जहाँ अपन शिखर जी में जाते हैं और जो कमरा अपन को मिलता है और छोड़ने में अपन को कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपने ही नहीं, पहले ही से नक्की रहता कि भाई साहब ये तो धर्मशाला है, इसको तो छोड़ना पड़ता है, तो एक मिनट में छोड़ देते। अब शिखर जी जाने के लिए ट्रेन में बैठना पड़ता है तो वो डब्बा अपना, सीट अपनी, पर छोड़ने में कितनी देर लगती, बिल्कुल नहीं लगती। ऐसे उतर जाता है जैसे अपनी सीट और अपना डब्बा है, था ही नहीं। क्यों सौमिल भाई? क्योंकि अपना नहीं, तो इतने में इस लाभ। ऐसे जहां दे अपनी नहीं, ये निर्णय मजबूती से होगा तो कभी भी लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि देह का एकत्व नहीं टूट पाए तो घर छूट जाएगा, मुनि भी हो जाओगे तो अभी मरण बिगड़ जाएगा। समाधि और मरण, बब्बे भाई दो शब्द हैं। समाधि होती है चार चौथे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान, पवित्र भाव। समाधि यानी आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि, आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि यानी जो लगेज में लगा है। जगत को तुम, जगत तुम्हें किस रूप में देखता है और आप अपने को किस रूप में देख, ये जो उपाधियां लगी हैं सब जानते, सेठ हैं, जैन हैं, पंडित जी हैं, प्रवचन कर रहे हैं, श्रोता हैं, वक्ता हैं, ये सब उपाधियां से न्यारा समाधि का परिणाम। तो बहुत सरल काम है परंतु दृष्टि सही हो तो। और नहीं तो ये बहुत कठिन काम है, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान पर बैठा लो, बहुत कठिन काम। और पढ़ा लिखा हो कि दवा के बारे में जानता हो तो बहुत सरल काम। तो कल इतनी चर्चा हो गई थी कि यदि देह को आप छोड़ते हो तो समाधि, और देह आपको छोड़ती है तो मरण। बेबी देह को हम छोड़ते हैं पुरुषार्थ से, ये मेरा नहीं, मैं अलग हूं, तो वो समाधि नाम पाएगा। और यदि आपको छोड़ना पड़ा, तैयारी नहीं हुई, तो मरण मरण तो होगा, देह तो छूटेगी। सारे जगत की कहेंगे भाई साहब कल तो दिख रहे थे, चले क्या बात। तो वो तो न्यारा था ही, तुम तो नहीं मानते थे, हम न्यारा हो गए। आज पढ़ना है अपन को, एक पेज नंबर है इसमें 433, 124 नंबर का पद है ना। स्नेहं वैरं संगम परिग्रहं चापहाय सोधिमना, स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रीरि प्रीरिवचनैः। स्नेह वैर संग परिग्रह, इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर स्वजन परिजन के जनों के प्रति सबसे क्षमा भाव ग्रहण करके, तथा आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हितरू वचनों द्वारा क्षमा मांग कर क्षमा ग्रहण करा। अब देखो विदाई समारोह है, जीव जा रहा, आप अपने को इस तरह अपने को पड़ा हुआ देखो कि एक एंड ऑफ लाइफ चल रहा टाइम, और अपना शरीर पड़ा है और अपने जाने की तैयारी है ना। तो कैसे कैसे चिंतन अपने चलते हैं, यदि भेद विज्ञान नहीं है ना तो कहाँ गया लड़का, कैसी दुकान है, कैसा काम है, परेशानी में तो नहीं है, तो ये परिणाम आपका भाव बिगाड़ देंगे। तो काय का लड़का है, इसमें इतना सुंदर निरूपण किया है सदा सुखदास जी ने पेज नंबर 434 पर। सम्यक दृष्टि जीव के स्नेह बैर दोनों का भाव होता है, न किसी से राग होता है और न किसी से द्वेष होता है। बता पद्म पुराण में किस व्यक्ति के राग के कारण से परिणाम बिगड़े और तीसरे नरक गए, पद्म पुराण है? राग के कारण रावण भी गया सीता के राग के कारण, मान कसाय के कारण, और लक्ष्मण भी राग के कारण। सारी जगत की जीव देखो ये समझ नहीं पा रहे कि जहां देह अपनी नहीं तो अपनी पत्नी पुत्र परिवार कहां से हो, परंतु कैसे माने ये जीव। सम्यक दृष्टि जीव के यानी जिसकी आंख खुल गई है, जो अपने को देह से भिन्न आत्मा मानता है, जब वो अपने को देह ही नहीं मानता तो देह से संबंधित परिवार जन को अपना कैसे मानेगा। और जब नहीं मानेगा तो राग नहीं होगा, तो गति नहीं बिगड़ेगी, भाव नहीं बिगड़ेगा। बाली मुनिराज ध्यान लगाए थे कैलाश पर्वत, और रावण निकला विमान से, विमान रुक गया क्योंकि 72 जिन मंदिर थे कैलाश पर्वत, और जहां जिनालय हो जिन मंदिर हो वहां चक्रवर्ती वो क्या कहते विद्याधर हो चाहे देव हो चाहे मुनिराज हो, उनको नीचे आना पड़ता था, पहले वंदना करेंगे भगवान की और फिर आगे विमान बैठे। तो रावण नीचे आया, देखा अच्छा ये बाली, अच्छा ये इसने मुनि पद तो धारण कर लिया पर इसने मान नहीं छोड़ा। और मान ही कौन था, रावण था कि मुनिराज थे, और दिखता किसे, उनको क्या मान दिख रहा था, उसमें मान दिख रहा था जो पवित्रता की मूर्ति मारदा धर्म के दाय। तो आया और कहते हैं मैं तुम्हें मजा चखाता, और पूरा पहाड़ उठा लिया विद्या के बल से। तो जो अपने बाली मुनिराज बैठे थे उन्हें अपने पैर का अंगूठा दबाया, जबकि कभी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते अपने मुनीषा, परंतु क्यों किया सोलह, क्योंकि 72 जन्मंदरों की रक्षा असंख्यात जीव दो इंद्री तीन इंद्री पक्षी अन्य जानवर उसमें थे। ये सबका विनाश देखने के कारण उन्होंने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया तो वो चिल्ला पड़ा रहा। और फिर मंदोदरी ने क्षमा मांगी, उनको तो किसी से राग द्वेष नहीं, परंतु ये कह रहे कि एक जरा सी अपनी मान कसाई की वृत्ति मुनि को मुनि नहीं देख पाता। ये बताना, ये आपकी जो खोट है ना, वो यदि वो खोट होगी ना तो वो हर जगह होगी। समय सार में आता है कि ज्ञानी के हर भाव ज्ञान में और अज्ञानी के हर भाव अज्ञान, हर प्रसंग में जो होगा ज्ञानी होगा, क्योंकि इसका माथा ठीक नहीं। यहां कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव की सीता के बारे में पूछते फिर रहे हैं कि हे पहाड़ पर्वत नदी तुमने सीते को देखा है, संकिति ज्ञानी को देखा है, ऐसा पूछते। अपन तो उन्हें सम्यक दृष्टि कहते ही नहीं, परंतु हमारे भगवान तो कहते हैं छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि से। तो वो कह रहे हैं कि सीता के प्रति उन्हें राग था कि नहीं, था कि नहीं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं। तो फिर कौन बोल रहा कि राग आवाज लगा रहा था और वे जान रहे थे कि देखो ये राग आ रहा है और हम गया था। समझ में आता है, थोड़ा सा सम्यक दृष्टि जीव को समझना यानी मोक्ष मार्ग को समझना कि रामचंद्र को सीता के प्रति राग आ रहा, रावण के प्रति द्वेष आ रहा, तो अभी राग और द्वेष कर नहीं रहे, गजब की कला, कर नहीं रहे आ रहा। जैसे हम और आप सवेरे 10 11 12 बजे भूख लगती, वैसे भूख लगाते हैं कि लगती, लगती है तो अपन लगाने वाले यानी खाने वाले पीने वाले माना ये अज्ञान है, भूख लगना ये मिथ्या तो अज्ञान नहीं। ऐसे सीता के प्रति राग आना ये तो नैतिकता है, भद्रता है, परिवार में रहोगे तो एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है। पर मेरी ये पत्नी है, मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ और ये मेरे कारण से सुरक्षित है, ऐसा मानना मिथ्यात है। ये मिथ्यात नहीं तो इसलिए इसमें क्या लिखा, ज्ञानी जनों के राग नहीं होता और द्वेष नहीं होता। अब देह तो उनकी भी छूटती है और उनको राग द्वेष नहीं होता। समय ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं तो कर्म के वश होकर इस पर्याय में यहाँ आकर उत्पन्न हुआ हूँ, पुण्य पाप कर्म के उदय के अधीन बाहर में जो क्या मिला है, स्त्री पुत्र आदि का योग बना है, इस पर्याय के उपकारक अपकारक द्रव्य प्राप्त हुए हैं। जैसा जब उदय हो, कुछ पुण्य का उदय हो तो हाथ जोड़ने वाले खड़े हो जाते, एक मिनट में पाप का उदय हो तो तिरस्कार करने वाले खड़े हो जाते। कोई व्यक्ति तिरस्कार नहीं करता, पारसनाथ के ऊपर कमठ उपसर्ग कर रहा था कि नहीं भाई साहब, कि जिनवाणी कहती कि नहीं कर रहा था, कि तो कमठ ने क्या किया, अपने ऊपर उपसर्ग करके भाव बढ़ाए। तो पारसनाथ का क्या किया कि पारसनाथ की पवित्र क्षमा, पारसनाथ का रत्नात्रय, पारसनाथ की भीतरागता समता श्रेणी आरोहण कौन रोक सका। यानी एक ज्ञानी को समझने के लिए आपको खुद ज्ञानी होना चाहिए। गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी तो उपसर्ग कर रहा है कि नहीं, अंकिता नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है उस सेठ, वो अपने भवांतर बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। इनका तो उदय आएगा और वैसी प्रतिकूल सामग्री मिलना चाहिए, नहीं तो उदय क्या कहलाता। उदय यदि ऐसा ना आए तो उदय बेईमान हो जाएगा। तो प्रकृति में माप किसी को नहीं, जो पांडव भगवान बनने जा रहे हैं और आग लग रही है शरीर को तो लग रही है, कोई कंसेशन यानी इतने तीन लोक के नाथ बनने वालों के प्रति भी कोई कटौती नहीं। इसका अर्थ है कि ये जो बांध रहे हैं वो नियम से अपने जीवन में उदय में आना। तो आपकी और हमारी कितनी तैयारी है, ये कह रहा ज्ञानी को तो कला आ गई है। अज्ञानता में बांधे गए जो कर्म है, तत्व ज्ञान होने पर भी भोगने ही पड़ेंगे कि नहीं, कि नहीं भोगने पड़ेंगे। तत्व ज्ञान की यही कला है, क्योंकि तत्व ज्ञानी को भेद विज्ञान चलता तो अब नहीं भोगेगा, पर अज्ञानता में बांध तो सकता बंधे। अब बताओ इस समय छायक सम्यक दृष्टि श्रेणी ये सब कहाँ इस समय नरक में, तो दुखी है कि सुखी? दुखी सुखी है। क्यों सुखी? वहां तो भूख लग रही, प्यास लग रही, पिटाई पड़ रही, दिन भर मारना कूटना लगा, तो भी सुखी है ना? सुखी है कि नहीं? बाहर नारक कृति दुख भुंजे, अंतर सुख रस घटाघटी। अंदर से वो सुख का घटाघट रसास्वादन करती, ये समझ में नहीं आता। कहीं का रसास्वादन करते हो कि अनंतानबंधी कसाय, अनंतों से अनुबंध कराती थी। कितने शत्रु खड़े हो जाते हैं राग और द्वेष के, और वो अज्ञानता निकल गई तो अब वहां जगत में नरक, जिसका नाम लेने पे अपन डरते हैं, और उस नरक में वो ज्ञानी पहुंच गया और फिर भी वहां जाकर के भी सुखी है। ये काय की कृपा है, ये भेद विज्ञान की और आत्मरुचि का फल। चीलना रानी ने पूछा था समोषण में कि बताओ महाराज, तुम्हें दिख रहा है समोषण में तुम्हारी भवानता? यहाँ दिख रहा है कि अगला भव नरक का और इसके बाद तीर्थंकर का। तो आपको नरक का भव जान करके डर नहीं लग रहा कि? नहीं लग रहा। कि क्यों नहीं लग रहा? कि नरक में दुख नहीं है, यही तो सम्यक दर्शन है। नार की मानू तब तो दुखी हो, समझ में? अभी जड़ तो देखो आप, भगवान तो अपन को मिल गए तो इतना भार उतर गया अपना। रोग किसे होता? शरीर को कि आत्मा को? और दुखी कौन होता? आत्मा। क्यों होता है? कि मोह का काम ही है दुखी का, दूसरे से जोड़ना और दुखी करना। और तत्व ज्ञान का काम क्या है? पर से भिन्न अपने स्वरूप को दिखाना और प्रसन्न रख। तो ये सब परिवार जो मिला है, कुछ ऐसा दिखता है कि आपके मन का हो रहा ऐसे अनुकूलता, एक मिनट में उदय पुण्य का आने लगता है और कुछ दो मिनट बाद ऐसा होता है कि आपको सहन नहीं होता, प्रतिकूलता जाती है। ये सब यू कह रहे हैं कि जीव ने जिनको इस पर्याय के उपकारक जाना, दान सम्मान आदि द्वारा स्नेह किया, जो इस पर्याय के उपकारक द्रव्यों को नष्ट करने वाले थे, उनको चारित्र मोह के उदय से बैरी मानकर उनसे परानमुख रहा। अब इस पर्याय के विनाश होने का समय आ गया है, अब मैं किससे स्नेह करूं और किससे बैर करूं? ये इतना हल्का जीव हो जाता है। अब उसे जाना है तो सबसे क्षमा मांगता है, जो हुआ भूल से हुआ। यानी गुरुदेव ने कहा था ना कि मैंने किसी को पर्याय बुद्धि से देख लिया हो तो उससे क्षमा मांग। गाली लिख के आती थी पेपर आते थे, और उसमें से जो मीठा भाई थे रजनी भाई के पिताजी, राजकोट में मिले, तो बोले स्वामी जी के पास ऐसा बहुत पत्र आया दो चार पेज का, और उन्होंने पढ़ा और गद्दी पर बैठकर जब सास सभा में बैठी कि आज बहुत बड़ा पत्र आया था, पर उसमें एक शब्द बहुत अच्छा आया था कि पापी है ये कांजी स्वामी। तो बोले मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पापी कहा जब, क्योंकि जो पाया है उसे पी रहा है, इसका नाम है पापी। कि जो आत्मा का लाभ लिया है, उसका जो अमृत पिया पी रहा है, उसका नाम पापी। अब बताओ अपना ऐसा अर्थ निकालने का भाव है? गांधी जी जैसे व्यक्ति को कोई एक गाल में चाटा मार तो दूसरा बता देते, और दूसरा बताने के बाद अब क्या बताएंगे, ये पूछने लगते थे हाथ में तकलीफ तो नहीं? ये कला कहां से आ जाती? ये तो बहुत बड़ा मार्ग है, कलेजी वाली का है, तत्व अभ्यास का है। ये जीव को एक एक परमाणु से यहाँ वियोग होना, जितना बगीचा लगा रखा है ये सब छूटना सबका। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो अमर होके आया हो। दे छूटेगी ही कोई माने या ना भी माने, इससे कोई सुनाई होने वाली नहीं है। परंतु छूटने के पहले आपकी तैयारी क्या है, इतनी सावधान हो कि नहीं? परीक्षा देने वाला बालक यदि पढ़कर तैयार नहीं हो तो पेपर देना बहुत कठिन जाएगा उसे, और साल भर पढ़ता हो तो कभी भी परीक्षा ले। ऐसे जो जीवन भर देसी वेद विज्ञान करता हो उसे कोई कष्ट नहीं। मेरा इन सभी के साथ संबंध तो है ही नहीं, मैं इनके आत्मा को जानता नहीं और ये लोग हमारे आत्मा को जानते हैं। अब देखो दिन भर देखते हैं अपन एक दूसरे, पर किसे देखते हैं? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को, ये शरीर अपना है ना। यानी बैर दूर करने का तरीका, वृंदावन दास जी थे, पंडित थे ना, बहुत बड़े 24 पूजाएं लिखी वृंदावन दास, और उनको एक व्यक्ति आया कि अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो पर्याय तो उसकी कही हुई बीत गई, तू तो सामने दे रहा, कहे को हमारा मगज खराब कर रहा। ये गाली की पर्याय बीत गई वो तुझे अभी तक याद? यानी कैसे हल्के रहते हैं, तत्व ज्ञान कितनी बड़ी उपलब्धि है, किसको कोई गाली दे सकता है? गाली सुन मन खेदनान, क्यों खेदनी आनी चाहिए? क्योंकि वो गाली किसी को स्पर्श नहीं करती। और ये क्यों नहीं करती? क्योंकि जो दिखाई देता है वो शरीर है, आत्मा को ना हम उसकी आत्मा को जानते हैं ना वो हमारी आत्मा को जानते, केवल हमारा और इनके शरीर का चमड़ा दिखाई देता। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है, किंतु ये चमड़े तो अग्नि में भस्म हो जाने वाले हैं। देखो इतनी ताकत से आपको पढ़ना पड़े समाधि मरण पाठ। आप अपने से ऐसी बातें करो कि ये जो दिख रहा है वो राख होने वाली पर्याय की पूर्व की दशा, इसमें लिख शास्त्र, ये सब एक एक परमाणु उड़ जाएगा। अब किससे तुम स्नेह हो, किससे बैर रखना चाहते हो, अगली पर्याय में ये दिखेगा भी नहीं। शिखर जी में आए थे उज्जैन वालों का शिविर लगा, तो एक व्यक्ति उसमें ऐसा आया था जिसको जाति स्मरण हो गया था, तो उसे खड़ा किया विमल दादा ने मंच, और उससे पूछा भावांतर कि तुझे पूरा भाव याद आता? तो उसने बताया कि मैं एक कैसे जैनी बन गया, अजैन था पूर्व पर्याय, अजैन बन गया, तो किसानी थी और बैलगाड़ी में भर भर के फसल को ले जाते थे, और मुझे दया आती थी बहुत कि कैसे सहन करते होंगे, ये पशु हैं, मूक हैं, इनको बराबर भोजन नहीं मिलता है, इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जाता है, ये भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। इतनी सी करुणा ने उसे जैन धर्म में जन्म दे दी। ऐसी ये करुणा आत्मा की कि ये मेरा कौन लगता है, इस शरीर कौन लगता है, इस तत्व की प्यास इस जीव को इस शरीर से छुड़ा करके और परमात्मा दशा में लगा दी। जो कोई आपसे बिना कारण अभिमान बसी बैर करने वाले, अब ऐसे भी हैं, अब पार्श्वनाथ का कोई कारण नहीं था और एक तरफा बैर था, कमठ हमें नौ बहुतों को अवसर की, तो कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बिना कारण ही बैर बांध, उनसे भी नम्र होकर क्षमा मांगना, क्यों? क्योंकि ये कसाय गलती है ना, तो नरमाए सजाती, तो वो किसी से भी क्षमा मांग सकते, और जब कठोरता रहती है और गलती भी अपनी हो और अपन कोई कहे भी कि भाई साहब क्षमा मांग लो, कि आप कहते तो मांगे लेते पर मैंने तो गलती की, तो ये क्षमा का स्वरूप नहीं, वो तो हृदय पिघलना चाहिए कि गलती नहीं भी हो और आपको ख्याल में आ गई तो हम तो क्षमा मांग। रोज सामायिक में बैठना, आलोचना पाठ पढ़ना, समाधि पाठ पढ़ना, ये भीतरागी भगवंतों की याद करना, इससे अपना हृदय पिघलता है, नहीं तो बहुत कड़ा हृदय है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो और रास्ते पर डला मिले और तड़प रहा हो, तो अपन वहीं से देख के निकल जाते हैं, इतना कड़ा हृदय। और तोरमल जी के जमाने में देखो, एक व्यक्ति बूढ़ा था, बीमार था, रास्ते में पड़ा मिला, और वो इंद्रध्वज विधान कराने जा रहे थे, और उन्होंने पहले उसे कंधे पे बिठा ला और औषधालय ले गए, उसकी दवाई कराई, और एक घंटे बाद वहां मंदिर जी में पहुंचे, तो पंडित जी साहब आपको समय का पता नहीं, 8 बजे से विधान होना था, कि पता है भैया, तो आप तो 9 बजे आ रहे हैं, विधान में नहीं आए आप, कि हम तो विधान वहीं से कर रहे जहां से चली थी, तुम्हारा विधान यहां दिखता है पढ़ने लिखने में, हमारा विधान लगता है जीवन में, हम इसको नहीं मानते कि यहां से हार के चढ़ा दिया और वहां तो ये हमारा विधान हो। हम ये कहते हैं कि आज्ञा तो मानो, सीमंदर भगवान क्या कहते, वो ये कहते हैं कि देह तेरा नहीं है, संसार में सुख नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, चैतन्य परमेश्वर है, ये आज्ञा मानना, विधान करना, उनकी याद आना कि आपने गजब का स्वरूप बताया, ये तो विश्व में कोई नहीं बताता। ये थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, ये देखो कितना चिंतन रखती है समाधि मन के साथ। यदि आपने किसी की धन धरती छीनी हो उससे क्षमा मांगना, और नीचे जो अपने कुटुंबी स्नेही मित्रादि हो उनसे इस प्रकार कहना चाहिए कि तुम स्नेही संबंधी हो परंतु हमारा तुम्हारा तो इसी पर्याय का नाता है, इसी पर्याय में है ना जो मिली है, और वो अपन को बिल्कुल सगे लगते, मम्मी पापा भाई बंधु, और अगली पर्याय में बताओ कौन किसको मिलता, और मिल भी जाए तो कौन किसे स्वीकार। रावण का पूरा परिवार, इंद्रजीत और कुंभकर्ण कहाँ गए, मोक्ष गए, और विभीषण स्वर्ग गया, तेरहवें स्वर्ग गया, और रावण कहाँ गए, नरक गया, मंदोदरी स्वर्ग गई, मैं राजा उसके ससुर तेरे में स्वर्ग गए। अब बताओ ये पूरा चारों गतियों में बट गया कि कौन किसका है, और अगले भाव में वो राग आएगा जो अभी दिख रहा। ये भ्रम छोड़ा रहा है कि अपन किस ये परिवार के राग में कितने पाप कर लेते, और फल अकेले को भोगना पड़ता। वाल्मीकि चोरी करता था, साधुओं को तक पकड़ता था, किसी कमंडल छुड़ा लेता था। तो एक बार किसी साधु ने कहा कि तुम जो काम करते हो ये कभी सोचा है कि इसका फल कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, सब परिवार भोगे, पहले एक बार पूछ के आओ, अच्छा तुम जिसमें भाग जाओ, अरे बोले हमें बांध दो तुम रस्सी से ये पेड़ से, और जाके परिवार में पूछ के आओ इसका फल कौन भोगेगा। तो मम्मी से पूछा कि मैं चोरी करता हूं इसका फल, मम्मी तुम्हें भी भोगना पड़े, तो बेटे मैं काय को भोगूंगी, मैंने तो ईमानदारी से तुम्हें पाला पोसा। पापा से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ, तब उसकी आंख खुली कि स्वयं किए जो कर्म स्वभासो फल निश्चय ही विधि, और उसने चोरी करना छोड़ा, संगति करी, और जो हुआ अन्न मत की चर्चा। अपने अति कहते हैं कि भाई हृदय परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा सोचो आप, एक कल्पना करो कि हम आखिरी में पड़े हैं और कोई शरण सहारी नहीं है ये तत्व ज्ञान के अलावा, और फिर हम अकेले जाएंगे इतने बड़े विश्व में, 343 घन राजु विश्व में, ये जीव कहाँ खड़ा होगा अगली पर्याय, वो क्या तैयारी। शिखर जी जाते हैं तुम 4 महीने पहले टिकट लेते, डब्बा निश्चित, सीट निश्चित, कमरा वहां जहां रुकना है वो निश्चित, डोली निश्चित, पैसा निश्चित, अभी विदाई समारोह के क्या निश्चित। तो इतनी तैयारी होनी चाहिए, इसमें यह निर्णय करना कि नहीं है शरीर अपना, नहीं है एक परमाणु मात्र भी अपना, किसी का नहीं हुआ है। बाहुबली खड़े रहे 1 साल तक कि मैं भरत की पृथ्वी पर खड़ा हूं, बाद में जैसे ही भरत ने सिर झुकाया कि प्रभु आप इतने महान पद पे हो, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं भरत की पृथ्वी, बाहुबली की पृथ्वी, भरत की पृथ्वी पर खड़ा, ये बस धा काहू की ना भाई, आप तो अपना ध्यान करो, नमस्कार करने में देरी हुई और वो केवल ज्ञान लीजिए। एक अटक जरा सी थी, ऐसा विकल्प आता था कि 6 खंड पृथ्वी का धनी यही तो है, यही तो है, एक विकल्प ने साल भर खराब कर दी, और नहीं टूटा तो नहीं टूटा। पढ़ना आप नियम सार में लिखा है कि बाहुबली के मान ने उन्हें 1 वर्ष लेट किया, बाबूजी इसमें बाहुबली का नाम लिया, इतने बड़े संत थे, तपस्या देखो आप उनकी दुनिया में बेजोड़, खड़े रहे तो खड़े रहे, बारिश हुई मामी बन गई, सर्प आ गए, घास उंगाई, कुछ हो जाए, परंतु वो विकल्प आत्मा नहीं देखने दे रहा, आत्मा में रमने नहीं दे रहा। अपनी बहुत तैयारी होनी चाहिए, और एक बात ये है सुलभ, ऐसा लगता है कि ये तो बूढ़ों का काम, ये जीव का काम है, ऐसा लगना चाहिए। समाधि यानी शांति, इसमें बूढ़ा और जवान क्या हो। यदि अपन घर में ये पाठ पढ़े समाधि पाठ, और मोहल्ले वाले पूछे क्यों भैया कोई जा रहा क्या क्या हो गया, कैसे कैसे दिन आ गए, क्या हो गया, कोई ज्यादा ही बीमार है क्या? अरे तो कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। समाधि मरण की तैयारी, समाधि मरण में मरण नहीं देखो आप, समाधि देखो तो वो मरण सुधरता। जीवन सही हुआ तो मरण ईमानदारी से हो जाए, और मरण की चिंता में जीवन भी बिगड़ जाए। कोई जीव मरता तो है नहीं, पहले से पढ़ाई ये करो, समय सार खूब पढ़ो कि जीव अनादि अनंत है, अनादि अनंत अचलम स्व संवेद मिदस्फुटम जीव स्वयं तू चैतन्य मुच्चै चकचकायते। जीव तो चैतन्यमयी चकचकायमान हो रहा, देह से तो नहीं आ रहा, अनादि अनंत। ये पढ़ाई दिन भर पढ़ना पड़ेगा। आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से भिन्न है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना धन्यति। ये दिन रात इसी मंत्र है, समझ में गारुणी मंत्र। वो जिसकी कमाई है उसी के काम में आएगी, अपनी कमाई अपने लड़के के काम में नहीं आएगी। मुरैन वाले पंडित जी का नाम सुना बाबू जी, गुरु गोपाल दास जी बरैया, बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े विद्वान कहलाते, जिनने लघु जैन सिद्धांत प्रवेश कर। वो बॉम्बे से जा रहे थे मुरैन, उनने डॉक्टर साहब को पढ़ाया मक्खन लाल जी, यानी उस संस्था में पढ़े। तो वो जा रहे थे वापस, तो सेठ ने कहा कि ये सामान ले चलना, तो उन्हें ज्यादा दिखा तो लगेज बनवाने लगे, तो एक एक चीज तुलवा रहे थे। तो उस सेठ को बहुत गुस्सा आई, उन्होंने कहा कि कैसा पंडित है, और बेइज्जती करवाना मेरी, ईमानदारी का काम कर रहे इसमें बेइज्जती क्या हो, कि तू तो ये सब तुलवा रहा, सब टीटीआई पहचान की। तो एक टीटीआई है कि पंडित साहब आप कुछ भजन वजन नहीं करवा, आप तो सामान रख। कि क्यों भाई, भजन नहीं करवाएंगे तो यात्रा में बाधा नहीं आई, नहीं आई हमें ना, तो कहां तक जाओगे आप, इटारसी तक जाओ, फिर इटारसी के बाद बाधा नहीं आई, फिर हम दूसरे टीटीआई को सौंप के जाएंगे, ये बेईमानी। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर परेशानी नहीं आई, फिर हम वो दूसरे से कह देगा। तो बोले पंडित साहब आपको मुरैना जी जाना कि नहीं भैया, हमें मुरैना जी नहीं जाना, हमें तो मोक्ष जाना। कि सब पंडित है, अरे ऐसा पंडित वो नहीं है, ऐसे ही बने बिना कल्याण नहीं है। सबको लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें एक काल पूरा नहीं करना है, हमें तो भव का भाव करने के लिए जीवन मिला, और अपन ऐसा सोच रहे कि अच्छे से जीवन जी लें, बढ़िया शांति से अनुकूलता बनी रहे, और फिर ट्रांसफर हो जाए अपना, जैसे कोई अपना रिजर्वेशन हो अगली पर जाए। आत्मा की रुचि बिना तुम कहां जाओगे, कहां पैर रखोगे, कौन तुम्हें अपनाएगा, और देखी दुर्गति कैसी होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा ब्रह्मदत्त शोभोम जैसे पड़े हैं साथ में नरक, असंख्यात जीव तो तीसरे नरक में तीर्थंकर वाले जीव पड़े, जिनको करणानियोग का अध्ययन हो वो जानते हैं कि तीसरे नरक तक तीर्थंकर का जीव होता, और वो भी कितने हैं, असंख्यात जीव वहां सम्यक दृष्टि तीर्थंकर के जीव पड़े श्री कृष्ण जैसे। पहले नरक में असंख्यात, दूसरे नरक में असंख्यातों असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि पड़ा, सोचो फिर अन्य जीव कितने होंगे। बहुत विकट संसार है, मतलब अपन थोड़ी विचार करेंगे तो अपन को कपकपी लगेगी, ऐसा सोचो भर कि अपने आखिरी समय चल रहा है। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति को शुगर थी, और वो व्यक्ति किसी पार्टी में गया और वहां से कोई मीठा खा के आ गया, जबरदस्ती से पार्टी में कहा आज थोड़ा तो लेना पड़े लेना पड़े, और ले लिया उसके कहने से, और उसे हो गया निमोनिया, बढ़ गई शुगर, निमोनिया भी हो गया। अब वो तड़प रहा था, तड़पते समय स्वामी जी ने लिखा उसमें कथा में कि उसी समय पत्नी ये पूछ रही थी कि हमें ये बताओ कि तुम्हारी एफडी कहाँ कहाँ है, अब वो ये कह रहा था कि गुरुदेव को बुला दो तो हमें दो शब्द सुना दे, हमारे देह छूटने का समय, और वो कह रहा है ये तो छूटते ही रहता है, पहले तो बचाओ ये बच्ची के संबंध होना है, वो कहाँ कहाँ आपने पैसे दिए हैं वो हमें ठिकाना तो बताओ। पत्नी धर्म पत्नी भी धर्म पति को कितना चाहती, किस संसार स्वार्थ में है, और फिर जीव किसके भरोसे जी रहा। अमर फल की कथा अपन ने सुनी बच्चों की, जैसे एक संत ने एक राजा को अमर फल दिया कि ये खाने वाले व्यक्ति को बहुत स्वस्थता रहती है और आयु अच्छे से भी, तो उसे सबसे ज्यादा राग था अपनी रानी के प्रति। उसने कहा कि ये स्वस्थ बनी रहेगी तो हमारे साधन बनेगा, घर संभालेगी, तो रानी को दे दिया। और रानी को सबसे ज्यादा लगाव था कोतवाल से, और कोतवाल को सबसे ज्यादा लगाव था वेश्या से, और वेश्या को लगाव था राजा से। तो वो अमरफल घूमते घूमते मलाड दादर पार्ला ऐसे घूमते घूमते और फिर आ गया। तो राजा ने जैसे ही देखा आश्चर्य में पड़ गया कि ये अमरफल कहाँ से लाई थी, गरी कहीं से मिला, आप खाओ आप स्वस्थ रहोगे तो मेरा जीवन स्वस्थ, ऐसा वेश्या बोल। राजा वेश्या की तरफ देखेगा कि अमरफल की तरफ कि स्वार्थ की तरफ, कि कैसा संसार है, हम जिसे चाहते वो हमें नहीं चाह रहा, जो जिसे चाह रहा वो दूसरे को चाह रहा, मतलब सब भ्रम में जी रहे हैं। अपन को पता नहीं है कि अपन को कौन चाहता है, ये तो पुण्य के उदय से जिसकी जो गाड़ी चल रही है, परंतु हकीकत पूछे यदि केवली होते तो वो जानते हैं कि सब जीव अपने अपने मर्जी से जीते हैं और सबके चित्त में कौन बैठा है ये बहुत कठिन अनादि का मामला है। हर जीव का अपने अपने पुराने संस्कारों से लगाव रहते, रावण का कितने भाव से सीता के प्रति लगाव है टूट नहीं पाए, लक्ष्मण से रावण की हमेशा लड़ाई, और बीच में सीता हिरनी बने, हथनी बने, गधी बने, कुकरी बने, सूकरी बने, सब पर्याय में जाए और ये दो व्यक्ति आते थे, दोनों लड़के मर जाते थे और फिर तीनों ट्रांसफर होके दूसरी गति में, ये बहुत बिकट संसार। आज के बच्चे तो मंदिरों में बैठते नहीं, अच्छे से आते नहीं, मतलब थोड़े बहुत हैं जो आते हैं, परंतु ऐसा विकट काल आया है मोबाइल का, व्हाट्सएप का और गंदगी का, कि इस जीव का मगज तो खराब कर ही रहा है, वासना पुष्ट कर रहा है, और अपना बेटा अपनी आंखों के सामने नरक चला जाएगा और अपने पैसे में। आप जिसे पैसा को उसे दे रहे हो उस पैसे को पाकर वो दुर्गति में जाएगा, कैसा लगेगा है? तो ये कितनी दया और करुणा से ये बातें लिखी हैं, मतलब आपको बहुत हृदय को भिगोना पड़ेगा। मूंग की दाल से मुगोड़े बनते हैं, परंतु भींगी हुई मूंग की दाल चाहिए। आटे से रोटी तो बनती है पर नरम और गीले आटे से बनती है, ऐसे रूखे आटे से नहीं बनती। ऐसे ही यही जीव भगवान बनता है, परंतु सरस हृदय हो, विरक्त हो, फटा हुआ चित्त हो, आत्मा से आसक्त हो, तो फिर ऊपर उठ जाता है, और नहीं तो ये पढ़ाई एक तरफ रह जाती, छह संज्ञान में चली जाती। अभी आखिरी में क्या बोल रहे थे कि भाई साहब एक कुटुंब परिवार है, ये सब शरीर से संबंधित है, और इस शरीर से संबंधित की चर्चा प्रवचन सार चरणान युग चूलका में की, ये देह को रमाने वाली रमणी, तू मेरी रमणी नहीं है, मेरी रमणी तो आत्मा है अनादि रमणी। ये देह को जन्म देने वाली मम्मी, तू मेरी मम्मी नहीं हो सकती, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा जनक कोई विश्व में नहीं है, और मैं अपने जनक के पास जा रहा हूँ, जननी के पास जा, ऐसी चर्चा उसमें दीक्षा लेते समय कराई गई। आप एक बार सच्चाई का उद्घाटन करके आओ, नहीं तो आप दीक्षा ले लोगे और वो तड़पते रहेंगे। तो उनसे कह के आओ कि सारे जगत के संबंध शरीर से, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्व। मोटे अक्षर से लिखा है, मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूपी अविनाशी है, अखंड है, मेरा निज रूप है, जिन स्वभाव का विनाश नहीं होता, जिसका संयोग हुआ है उसका अवश्य वियोग होगा, जो अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है उसका अवश्य विनाश ही होगा। इसलिए इस विनाशी का ज्ञान जड़ स्वरूप मेरे पुद्गल देह से क्या करना है, इसने छोड़कर क्या करना है, अपने अविनाशी ज्ञायक आत्मा के उपकार करने में उद्यमी होना योग्य। अपनी चीज लगेगा आत्मा तो फिर वीर इसमें समर्पित हो। जिससे भी आप अपनापन रखते हो वहां सर्वस्व समर्पण करने का भाव आता है। तो ये देह की रचना का स्वरूप बता दिया है, पुद्गल से बनी है और उससे न्यारी आत्मा है। पेज नंबर 435। तथा ज्ञानादि की उज्ज्वलता प्रकट हो, वितराग निस्वभाव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा निरंतर प्रयत्न करेगा तो जीव आगे बढ़ेगा। यह पर्याय यानी शरीर तो कितनी बार मिली इस जीव को, अनंतों बार मिली। अभी अपन जितने लोग बैठे हैं कितने बार जन्मदिन मनाने गए लोग और कितने बार शव यात्रा में गए। सबके अनुभव है, जन्मता भी है और देह छूटता भी, परंतु अब न जन्मे न हम किसी को जन्म दें और न किसी से जन्म लें। अब ये मानस बनाना पड़ेगा, बहुत हो चुका। कितना एक महावीर स्वामी के भव जो आदिनाथ से लेकर महावीर तक की पर्याय के गिनते हैं तो घबराहट होती। करोड़ों बार घोड़ा, कुत्ता, बेस्या, 2500 बार अकौआ का झाड़ू, 60,000 बार बेस्या, 3 करोड़ बार कुत्ते की पर्याय में गया, 8 करोड़ हाथी के भव, घोड़े के भव में क्या कहलाता है, एक बड़े पुरुष का तो सब लिखा मिल गया। और अपना क्या होगा, अपना तो कोई बताने वाला नहीं अभी, और अपन भी तो उसी काल के हैं कि नहीं, और जन्म मरण तो कोई कंसेशन तो है नहीं कि भाई साहब अपन जैन हो गए तो अपन को माफ कर देगी, फिर मम्मी के पेट में आना पड़े, फिर जन्मेंगे, फिर जन्म देंगे, फिर लेंगे, ये नाटक कब बंद होगा। और एक बार गर्भ के प्रसंग का दर्द इतना बुरा बताते हैं कि नरक के नारकी से ज्यादा कष्ट होता गर्भ, और अव्यक्त करने का कोई अंग नहीं, घुटन है, सांस नहीं है, झूठा भोजन है, धातुओं से शरीर की रचना हो रही, रज वीरज से क्या नाटक है इस संसार में, प्रकृति में सब देख रहे इसको, और तो भी जीव पिघल नहीं रहा। अब कितनी करुणा है, ऐसी जगत में चर्चाएं कहीं नहीं चलती, वो उनकी समाधि कैसी होती, धरती में गड़ जाओ, पानी में डूब जाओ, अग्नि में चले जाओ, जल समाधि, अग्नि समाधि, धरती की समाधि, अपने यहां कैसी है, आत्मा में प्रवेश कर जाओ, शांति से देह को अपना मानना छोड़ दो, अपने बल से जियो, सुखी रहो और सुखी रहने दो। आप भगवान बन जाओगे तो आपके निमित्त से जो अनंतों जीव कष्ट पाते थे वो बंद हो जाए। हमारा एक दिन का जीवन असंख्यातों जीव की प्राण लेता है प्रतिदिन, अपन चाहे पानी पिए, चाहे चले, चाहे खाएं, चाहे लेटरिंग जाएं, चाहे बाथरूम जाएं, जो भी घटना घटती है उसमें असंख्यातों जीव मरते, और यदि आपको उन पर दया आती हो तो आप सिद्ध बन जाओ। बस सच्ची करुणा ये है कि भगवान बने बिना कोई गुजारा नहीं, यदि दया आती हो, क्योंकि दया तो कर नहीं सकते, जीव तो अपनी योग्यता से चल ही रहा, पर हम निमित्त बनते ना उनके कष्ट। तो ऐसी मार्मिक चर्चा जो अपनी सदा सुखदास जी ने की है कि मैंने दर्शन ज्ञान चारित की विपरीतता से विषयों के अधीन होकर विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण करके चारों गतियों में भ्रमण किया। विपरीत श्रद्धान यानी विपरीत श्रद्धा की, विपरीत ज्ञान किया, विपरीत आचरण किया। तो शास्त्रीय शब्द है विपरीत श्रद्धा यानी देह जीव को एक गिन, देह जीव को एक गिने यानी देह जीव दो नहीं देखता वो, यही में हो, यही में हो, ऐसा लगता है। आप खुद देखना अपने अपने में प्रयोग करके, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये उठाया, मैंने खाया, मैंने पिया, तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आपको नाश, इस तरह से चलता रहता है। ये सब मिथ्या श्रद्धान सी इस जीव के कितने पृथ्वी पाषाण जल अग्नि पवन वनस्पति पांच स्थावरों में जन्म लेना पड़ा। एक बार स्थावर पर्याय में पहुंची तो वहां से निकालने वाला कोई है साधन? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, यानी अपन ने पढ़ा न जो विमान वासी हो था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो दुख पाए तो फिर जाता कहाँ है? ताते थावर तन धरे, इतना बड़ा देव जो पूजा पाठ स्वाध्याय करके मंदिर बना के और खूब धर्म आराधन करके गया था और वो मिथ्यात नहीं छोड़ पाया तो देव बना, और देव बना तो खूब आनंद से भूखता रहा और मरते समय उसे ये लगने लगा कि अब प्राण जाएंगे और मुझे गर्भ में आना पड़ेगा, कैंसिल करो गर्भ में नहीं आना गर्भ में नहीं आना गर्भ, ऐसे परिणाम बिगड़े कि एक इंद्रिय पर्याय में आ गए। अब पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति इनमें से निकालो आप कोई ताकत हो, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल पड़ा रहता, किसा संसार है विचित्र। ये तो तीन लोग के नाथ मिल गए और उन्होंने बताया, नहीं तो इस जीव को अपने ऊपर करुणा नहीं आती, कभी नहीं पूछता ये अपने कल्याण की, आयोजनों की तो पूछता बाबू जी कार्यक्रम कैसा रहा, अरे तो कार्यक्रम तो उदयाधीन है और जड़ के परिणाम, हमारा क्या होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाते। और ये जैन दर्शन है हृदय परिवर्तन का नाम, जिस समय श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला था और श्रेणिक महाराज ने डाला और तीन दिन बाद बताया चेलना को, चेलना आत्मज्ञानी जीव, और उसने कहा कि ये अच्छा काम नहीं किया तुमने, तो जैनत्व के प्रति जो विराधना का प्रणाम किया इससे बहुत कष्ट भोगना पड़ेंगे। और उसने देखा कि मुनिराज बैठे हैं, सचमुच में उनने उपसर्ग नहीं निवारण किया, गए चेलना ने उपसर्ग के निवारण की विधि बताई, घी शक्कर डाल के वो सब चीटी अलग हो गई, फिर सर्प निकाल दिया और मुनिराज ने दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु एक सा कहा बाबू जी, तो एक से जब आशीर्वाद दिया तो श्रेणिक का हृदय बदल गया कि कौन से कलेजे का धर्म है, एक आदमी तीन तीन दिन तक उपसर्ग कर रहा, लाखों चींटियां इनके शरीर को इतना काट के सूज गया, ये जो तक गड्ढा सा दिखता है ना उनका ये सब पूरा प्लेन हो गया, पूरा शरीर फूल गया था, और फिर भी वे कह रहे धर्म वृद्धि रस्तु, ये कौन सी पढ़ाई, यही पढ़ी थी कि श्रेणिक का जीव इस घटना का करता धरता नहीं है, उदय में ये काम होना ही चाहिए, और श्रेणिक ने अपने परिणाम बिगाड़कर अपने भाव खराब किए, हमारा कुछ नहीं किया, ये विद्या ने उन्हें कसाय नहीं करने। तो मिथ्या दर्शन यानी देह में अपनत, चार चार प्रकार की बुद्धि बोलती थी स्वामी जी, देह में अहम बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि और पुण्य में धर्म बुद्धि। फिर से देह में अहम बुद्धि, देह में कौन सी बुद्धि, अहम बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पढ़ाने ही नहीं पड़ता, ये सब पढ़े पढ़ाए पैदा होते हैं कि सामग्री चाहिए, अनुकूलता चाहिए, धन चाहिए, जी ये आत्मा चाहिए, शांति चाहिए, कसाई का भाव चाहिए, ये पढ़ाई तो भगवान ही सिखाए। तो पहली पढ़ाई क्या अपन ने उल्टी पढ़ी है, देह में अहम बुद्धि हो गई है, अनादि से चल रही, विषयों में कौन सी बुद्धि चल रही है, सुख बुद्धि, घर घर इसकी क्लास से लगती है, अच्छे से रहना, खाया पिया के नहीं आराम करो, इसी में रहो, कोई परेशानी नहीं आई, जरा सा पंखा चला दिया था गुरुदेव के सामने जयपुर में तो वो बोले थे कि तुम्हें नरक की याद नहीं आती, वहां कैसे रहे हो। और तीसरा क्या बताया, पर द्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, ऐसा कितने पढ़ाओ ऐसा लगता है जैसे मैंने ये जिनवाणी उठाई, मैंने रखी, मैंने लाया, मैंने ये उठाया, ये रोग महा घृणित रोग, क्योंकि जीव को ज्ञाता तो दिखता है नहीं, शरीर से कर्तव्य है तो वो निमित्त बनता है उसी कर्तत्व। तीसरा क्या बताया, पर द्रव्य में कर्तत्व बुद्धि, और चौथा क्या है, पुण्य में धर्म बुद्धि। अब थोड़ा बहुत घबरा के मंदिर में आया, थोड़ी विशुद्ध परिणाम हुए, कुछ सीखा समझा समझाया तो यहाँ हो गया, अब हम आए धर्म कर। और सुनाओ क्या हाल, क्या सुना है कि आत्मा जानती नहीं, क्या सुना है? अपने साथ अन्याय जो हो रहा है उसे दूर करने के लिए ये चर्चा है। इस तरह से तीसरी गाथा जो अपन ने पढ़ी, अनादिकाल से जीव ने मिथ्या से अनंत अनंत बार बाल मरण किए, यदि एक बार भी पंडित मरण यानी विवेकियों के जैसा देह छोड़ने का ईमानदारी से देह छोड़ता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता। कितना बड़ा आशीर्वाद है कि तुम एक बार भर आदर करो कि मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, मेरे है एक आत्म या में ममत झुकी, ऐसा मानस बनाओ तो अनंत भाव के प्रोग्राम कैंसिल हो जाए जो अपने विपरीत चल रहे। तो अभी चालू कर रहे कि हम अप... है कर रहे चालू हो गए। अच्छा, इसमें थोड़ी सी सात आठ पद पढ़ेंगे पुरानी कवि की।
बंदो सीयर हंत परम गुरु जो सबको सुखदाई, इस जग में दुख जो मैं भुगते सो तुम जानो राई। अब मैं अरब करूं प्रभु तुमसे कर समाधि उर माही, अंत समय में अवर मांगू सो दीजो जगराई।
भव मेत धारे नई में भव भव शुभ संग पायो, भव भव में नृप रे दिलई में माते पिता सुते था। सभी लोगों के द्वारा उच्चारण होना चाहिए, बहुत पवित्र अर्चना है। भव भव में तन पुरुष तनो धर नारी हो तन लीनो, भव भव में वयो नपुंसक आत्म गुण नहीं चीनो, भव भव में सुर पदवी पाई ताके सुख अति भोगे, भव भव में गति नरक तनिध दुख पाए विधि योगे, भव भव में तेरे अंचयो निधर पायो दुख अति भारी, भव भव में सादरी मीजन को संग मिलो हितकारी, भव भव में जिन पूजन कीनी सुपात्र ही दीनो, भव भव में समाओ शरण में देखो जिन गुण भीन, इति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि मरण कियो में ताते जग भर मायो, काल अनाद भयो जग भ्रमते सदा कुमर नहीं कीनो, एक बार सम्यक युत में निज आत्म नहीं चीनो, जो निज पर को ज्ञान हो ये तो मरण समय दुख देविनाशी में निज वासी शांति स्वरूप सदाई विषय कसायन केव से होकर दे आपनो जान्यो करमित्या सरदान ये बिच आत्म नाही पिछान्यो यो कली सही धार मरण कर चारों गति वर मायो सम्यक दर्शन ज्ञानी चरण ये हृदय में नहीं लायो अब यह अरज करूं प्रभु सुनिए मरण समय यह मांगो रोग जनित पीड़ा मत हो हरु कसाय मत जागो ये मुझे मरण समय सुख दाता इन हर साता कीजे जो समाधियुत मरण हो ये मुझे हरु मिथ्या गद छीजे ये तन सात को धाते मई है लेखत ही हिन आवे चरम लपेटी ऊपर सो है भीतर भेषा पावे अति दुर्गंध अपावन सोय मूरख प्रीति बढ़ावे देह विनाशी जिय विनाशी नित्य स्वरूप कहावे ये तन जीण कुटी समयातम याते प्रीत न कीजे नूतन महल मिले जब भाई तब या में क्या छीजे मृत्यु होने से हानि कौन है या को भय मत लाओ समता से जो दे इसे अवसर के माही जीरण तन से देत नयो यह या समय काहु नाही या सीति इस तु समय पर कीजे क्लेश भाव को त्याग सयाने समता भाव इस तरह से दस दस पद अपन प्रतिदिन पढ़ सकते सहजानंदी स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप
स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप
निष्कर्म अवस्था ने प्राप्त ऋषभादिति महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान 9 सिमंदरादिति अजित वीर पर्यंत 20 वीरमान जिनेन्द्र भगवान 9 अर्ज्ञान बलना धारक एवं श्री बाहुबली मुनिन्द्र भगवान 9 स्यादवाद रूप अनेकांतमय समय सा नियम सारादि समस्त जिनवाणी मात 9 कलिकाल सर्वदे कुनकुन आदि समस्त आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवान 9 जिनवाणी ना उंडा ने गहन रस समझावनार अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरु देव 9 कान गुरु महिमा बतावनार प्रशम मूर्ति भगवती मात 9 अपुरोसर आत्म सिद्धि दाता रेवा कृपाणु देव 9 श्री परम पवित्र सनातन दिगंबर जैन धर्म 9 निज निधि निज में बताए वह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो स्यादवाद रूप अनेकांतमय जिनवाणी मात 9